السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اوکے، ہم مخارج سے شروع کرتے ہیں. کافی سارے مخارج ہم کور کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم آئی تھنک ہم لوگ ٹپ آف ٹنگ کے اوپر تھے، اور ہم نے ٹپ آف ٹنگ سے آنے والے کافی سارے لیٹرز کر لیے ہیں. مجھے کریکٹ کیجئے اگر میں غلط ہوں. ہم نے نون کیا، را کیا، اور حروف النطقیہ، تا دال اینڈ ضاء کیا، رائٹ؟ اور جی آج ہمارا یعنی لاسٹ ٹو مخارج رہ گئے ہیں ٹپ کے نا. جی انشاءاللہ ہم انہیں کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم لیٹرز پڑھیں گے وہ ہیں حروف اللسویہ. لسوی لیٹرز سا، ذال اینڈ ضا. یہ تین لیٹرز ہیں جو کہ حروف اللسویہ کہلاتے ہیں. یہ تینوں لیٹرز ایک ہی مخرج سے آتے ہیں. جب زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں، ثنایا علیہ، ان کے کناروں سے لگتی ہے تو یہ تین لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ان لیٹرز کی ادائیگی میں آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر ون، کہ آپ اپنی ٹپ کو ایجز پر لگائیں. جیسے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ میرر میں دیکھیں اور آپ کی ٹپ کو باہر آنا چاہیے دانتوں سے. تو اگر آپ اپنی ٹپ کو بہت زیادہ دانتوں سے باہر نکال رہے ہیں تو اس سے آپ کی آواز ان لیٹرز کی خراب ہو جاتی ہے. بہت پریسائز 100% ساؤنڈ نہیں آتی، کیونکہ اس کا مخرج جو ہمیں ہر جگہ لکھا ہوا ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ٹپ کو لگانا ہے. تو اگر آپ زبان کو ذرا سا بھی باہر نکال دیں گے نا تو ٹپ تو آپ کی باہر نکل جائے گی، اور پھر جو حصہ دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگ رہا ہوگا وہ ٹاپ ہوگا. اس سے آواز میں 19-20 کا یا اس سے زیادہ ڈفرنس آنے لگ جاتا ہے. یا بعض اوقات کچھ صفات کی امپرفیکشن کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے ٹپ کو اپنے کناروں کے ساتھ لگانا ہے. شارپ ٹپ کو استعمال کریں، اور شارپ ٹپ کو اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ لگائیں. دوسری چیز جس کا دھیان رکھنا آپ کو ضروری ہے وہ یہ کہ ثنایا علیہ دونوں دانتوں کے کنارے استعمال ہو رہے ہوں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ٹپ ہے وہ اتنی سکویز ہو کے لگ رہی ہے کہ وہ ہلکی سی دانت کے بس کسی حصے پہ لگ رہی ہے. نہیں، آپ اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ تینوں لیٹرز ہی نا ساؤنڈ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ساؤنڈ رن کی جائے، ساؤنڈ آپ کی اچھی آنی چاہیے. تو آپ اس میں تھوڑا پھیلا کر دونوں دانتوں کے کناروں پر لگائیں گے تو آپ کے لیے یہ ساؤنڈ کی جو رننگ کرنا ہے یہ آسان ہو جاتا ہے، ایس یوں کر کے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ایک اور چیز کا دھیان رکھیں، اور وہ یہ کہ نیچے والے دانتوں میں اور اوپر والے دانتوں میں آپ نے ٹپ کو دبانا نہیں ہے، رائٹ؟ یعنی جیسے وہ بائٹ کرتے نا، اتنا زیادہ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا کہ آپ کی ٹپ دبنے لگ جائے. اگر آپ کے نیچے والے دانت تھوڑے ڈسٹینس پہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ہلکے ہلکے ٹچ کر رہے ہیں نیچے سے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن نیچے والے دانتوں سے اس کو پریشرائز نہ کریں. اب جب اس کو پریشرائز کریں گے نا تو آپ کو اپنی ٹنگ کے اوپر ایک اریٹیشن سی فیل ہوگی، और उससे आप अपनी साउंड को अच्छा रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये इरिटेशन फील हो रही है लेटर्स की अदायगी के दौरान, तो आप अपने नीचे वाले दांतों को थोड़ा डिस्टेंस पर रखें, या आप बिल्कुल सॉफ्ट उनको ऐसे जैसे आप इन्वॉल्व नहीं करें, वो खुद हल्के से टच हो रहे हैं बस, यानी वो ज्यादा वहां पर स्ट्रांग एक हिट ना दें। ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है लेटर्स की परफेक्शन के लिए। फिर हम इंडिविजुअल लेटर्स देखते हैं, सा, राल एंड वॉ, ये तीन लेटर्स यहां से आते हैं। असा, सबसे पहले हम सा को देखते हैं। सा दोनों लेटर्स से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सा में सा को बोलते हुए आपने हवा को बाहर की तरफ निकालना होता है, यानी ये साउंड अस करके आएगी। ठीक है, आएगी कहां से? टिप और एजेस से, लेकिन जो लॉट ऑफ एयर है आपने उसको बाहर की तरफ निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों लेटर्स में आपकी साउंड अच्छी आनी चाहिए। एक साउंड यानी कोई भी ऐसा लेटर, जैसे ता, दा, दो, मैंने तीनों में आपको कहा था ना कि इसमें जो साउंड है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे ही आप मखरज को हिट करते ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉल के हिट की तरह की आवाज देनी होती है, और साउंड फिर डिसअपियर हो जाएगी। मतलब एक हिट की आपको आवाज आती है और फिर साउंड नहीं आती। लेकिन ये तीनों लेटर्स उससे ऑपोजिट हैं। इन तीनों लेटर्स में आपकी साउंड रन करती है, लाइक सा या राल या वो, तो आप उसकी साउंड को थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं। सा के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एयर भी आपने ब्लो करनी है और फिर साउंड भी आपकी अच्छी आनी चाहिए। इसमें हरका की अदायगी के वक्त मैंने बहुत ज्यादा ये नोट किया कि खास तौर पर जैसे ये वर्ड आते हैं ना, सुम्मा, इसमें स्टूडेंट्स सा को बहुत स्किप करते हैं। लाइक साउंड इनकी कैसे आती है, तुम्मा तुम्मा। अब आप देख सकते हैं कि सा इज नॉट ऑडिबल। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, पहले मखरज को हिट करके थोड़ी साउंड दे, फिर आप दम्मा और मीम, सू सू, यानी सू आपकी साउंड रन होगी, फिर आप मीम के साथ ज्वाइन करेंगे, सुम सुम। फिर इसमें यानी एक तो ये कि इसमें जल्दी होने लग जाती है, फिर दूसरा ये कि समटाइम्स इसकी नाक में भी आवाज आने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे लेतु बा सुन सु, नहीं सु सु, पुश करें बाहर की तरफ साउंड को, लेतु बा सुन। ठीक है, तो सा की साउंड आपकी अच्छी आनी चाहिए, प्लस उसमें कोई एसएच नेजल साउंड नहीं पाई जाती। समझ में आ गई ये बात। इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वो है जाल। जाल के लिए हम वही मखरज वैसे ही प्रिसाइज इस्तेमाल करेंगे। प्रिसाइज टिप ऑफ टंग सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारों के साथ लग रही होगी। फिर इसमें भी आपने वो फैलाकर जबान को लगाना है। ठीक है, बहुत बारीक करके नहीं लगाना, और इसकी साउंड में भी रन करनी, रनिंग है, यानी रन रनिंग ऑफ साउंड इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें आपने एयर ब्लो नहीं करनी। अब ये सांस से ऑपोजिट हो गया, इसमें आपने बिल्कुल एयर ब्लो नहीं करनी, अज अज ये साउंड। और जब आप एयर कंट्रोल करते हैं ना, समटाइम्स आपको अपनी टंग के ऊपर कुछ इरिटेशन सी फील होती है, तो आपने ये बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा उसको दबाए नहीं, सॉफ्ट सा टच है। जितना आप सॉफ्ट हिट देंगे ना, उतना आपको आसानी होगी साउंड को रन करने में। अगर आप हिट को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो रिजिस्ट करता है। जितना हिट स्ट्रांग होता है, उतना वो रिजिस्ट करता है कि साउंड रन ना करे और साउंड हिट ऑफ अ बॉल की तरह हो। एक हिट की साउंड आपको आए और उसके बाद आपको साउंड ना आए, तो हिट को आपने सॉफ्ट करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर फिर बहुत ज्यादा ये भी सुनने में आता है कि लेटर बाउंस कर जाता है, लाइक इज कॉल, इज नहीं, इज कॉल, टाइम दे, साउंड रन करें विदाउट एयर और उसको हिलाना नहीं है, इज कॉल, इज मखरज के ऊपर आवाज खत्म करके फिर नेक्स्ट लेटर। अगर आप इसे यूं कहते हैं, इज कॉल, या इवन इज कॉल, इज, आप रन तो कर रहे हैं मगर जब आप छोड़े हैं तो आप बाउंस के साथ छोड़े, इज कोला, दैट्स नॉट गुड, इज कोला, ठीक है, यानी आपने पूरी साउंड को रन करके फिर आपने साउंड खत्म करनी है और फिर इमिडिएटली आपने कॉफ को बोलना, बीच में डिस्टेंस नहीं देना, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखने की राल में जरूरत है। राल में किसी किस्म की आपकी बजिंग नहीं आती, आपकी बजिंग तब होती है जब आप टिप को बिहाइंड टीथ रखते हैं, ठीक है, तो इसमें बजिंग किसी आवाज नहीं होगी, नो एयर, सिर्फ अच्छी साउंड रन हो रही है और राल की आवाज आनी चाहिए, ठीक है, राल की साउंड अच्छी आनी चाहिए विदाउट बाउंस, स्पेशली जब वो साकिन हो। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो है रॉ। लेटर रॉ और राल काफी सिमिलर हैं, एक्सेप्ट ये कि रॉ को आपने हैवी करना होता है, बाकी ऑलमोस्ट आप इसको राल की तरह बोल रहे होते हैं, सेम मखरज है, रनिंग है, नो एयर, साउंड उसी तरह से आपने रन करनी है, लेकिन आप इसे हैवी करेंगे। अब हैवी करने के लिए ना बाज़ोकात इसमें ये एक कॉमन एरर हैवीनेस में पाया जाता है कि हम लिप्स का सर्कल बनाने लग जाते हैं और उससे हैवी करते हैं, तो अगर आप लिप्स के सर्कल से हैवी करें है ना, तो वो वाली हैवीनेस ज्यादा बम की आवाज देती है, लाइक पेश की और दम्मा की या सर्कल ऑफ लिप्स की, लाइक वो, मैं ये वो बोल रही हूं लेकिन ये वो पेश की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि लेटर हैवी तो हो लेकिन मुंह के अंदर टंग की पोजीशन से हैवी हो, लिप्स को सर्कल ना करें, मीन, ठीक है, इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट राल की तरह है, ये वाले लेटर्स मखरज के तबार से नॉट टू मच हार्ड, आपको बस कपल ऑफ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, मिरर में आप देख सकते हैं इसको, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें टिप आपकी बहुत ज्यादा आउटवर्ड ना आए, अगर वो बहुत ज्यादा आउट होती है तो उससे आपकी साउंड अमूमन खराब हो जाती है, या कुछ चीजें सफात में ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकली फिर नहीं कर सकते। लहसा हुईया चूंकि ये दांतों की जड़ों के पास से आ रहे होते हैं इसलिए फिर हम इनको लेस अवी कहते हैं, ठीक है, लेटर्स लेस अवी, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड लेस अवी, लेकिन ये सारे लेटर्स जो नतवाइया है या लेस अवीया है, ये टिप और अपने प्रीसाइज मखरज की वजह से इनको ये नाम दिए गए हैं। नो इट डजंट हैव अ विस्लिंग साउंड, इन तीनों में से किसी भी लेटर के पास विस्लिंग आवाज नहीं है। ठीक है जी, अब हम टिप ऑफ टंग के लास्ट लेटर्स पढ़ते हैं और वो है जिन्हें दो तरह से नेम किया जाता है, हरूफ सफीर और हरूफ असलिया। ठीक है, हरूफ सफीर असलिया जो है, असल आप कहते हैं टिप को, बिल्कुल जो सीन के साथ, ये स्वाद के साथ असल नहीं है, ये असली या सीन के साथ है, तो वो टिप के रिजेम्बलेंस से ही आ रहा है। आई कैन नॉट राइट अरबिक, आपके जो नोट्स है ना उसके अंदर ये चीज मेंशन है, लेटर्स के नाम मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, नोट्स के लिए एडमिन से कर सकते हैं जिनके पास नहीं है, तो ये जो ये वर्ड है ना असलिया, ये सीन से है, अलिफ लाम, अलिफ सीन लाम या गोलता, असलिया, ये मैं एक्चुअली उर्दू में प्रोनाउंस करनी हूँ वरना इसको अरबिक में हमजा लाम हमजा कहा जाता है, लेकिन अगर मैं हमजा कहूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अलिफ लाम अलिफ जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना अलिफ, उस तरह से, तो असल जो है वो टिप को कहते हैं, तो ये लेटर्स चूंकि टिप से आ रहे हैं इसलिए इन्हें असलिया कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है हरूफ सफीर, ये सौद से है, अलिफ लाम सौद फा या रॉ, सिफर से असफीर, तो सफीर इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि सफीर एक्चुअली हम यानी सफीर का जो बेसिकली ये वर्ड तो सफर से है, इसके भी हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन देखते हैं, मगर इसका मतलब होता है विस्लिंग साउंड, तो चूंकि इन तीन लेटर्स के अंदर विस्लिंग साउंड है, इस वजह से फिर हम इन्हें हरूफ सफीर कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हैं? सीन, ज़ा, सौद। सीन, ज़ा एंड सौद, इनके मखरज को दो तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। बाज़ किताबों में आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलती है, बाज़ में दो दूसरी मिलती है। हम दोनों ही को पैरेलल लेकर चलेंगे, दोनों डेफिनेशंस को पैरेलल पैरेलल लेके चलेंगे और दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली इसकी डेफिनेशन ये है कि जब आपकी टिप ऑफ टंग नीचे वाले बॉटम इंसाइजर्स, अब आप, मैंने आपको बताया था ना सारे लेटर्स ऊपर वाले दांतों से आते हैं, इसलिए हम उनके नामों के साथ उलिया उलिया, लेकिन जो नीचे वाले दांत होते हैं उन्हें हम सुफला कहते हैं। तो सिर्फ एक ये मखरज है जिसमें आपके सुफला टीथ की समहाउ इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इन्हें हम कहते हैं सनाया सुफला। जब आपकी टिप ऑफ टंग नीचे वाले दांतों के सनाया जो सुफला है उनकी अंदर वाली प्लेट्स के करीब जाती है या उनको छूती है, तो ये तीन लेटर्स अदा होते हैं। टिप ऑफ दी टंग टचेस दी इनर प्लेट्स ऑफ बॉटम इंसाइजर्स। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इनर प्लेट से क्या मुराद है? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इनर प्लेट्स यानी अंदर वाला, दांतों का जो अंदर वाला हिस्सा है वो। ओके, ये इसकी एक डेफिनेशन है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि जब टिप ऑफ टंग ऊपर और नीचे वाले इंसाइजर्स के पैरेलल आ जाती है, ठीक है, किनारा किनारा नहीं कह सकते, हाँ वॉल्स ऑफ बॉटम इंसाइजर्स, यानी आप देखें कि आप, आपका एक टीथ का आउटर पार्ट है ना जहां आप ब्रश करते हैं, ठीक है, आपका एक आउटर पार्ट है, इसी तरह से टीथ का एक इनर पार्ट होता है जहां पर ब्रश करना थोड़ा हार्ड होता है, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है वहां से ब्रश करने, वो वाला जो पार्ट है इनर पार्ट जो अंदर की तरफ है ना, आउटर लेयर है तो वो आउटर लेयर ही, लेकिन वो अंदर की तरफ है, यानी मुंह के अंदर की जानिब है जहां आप दांत अपनी टंग को टच कर सकते हैं, वो वाला इनर, वो उसको हम कहते हैं इनर प्लेट्स। आउटर प्लेट्स बाहर है और इनर प्लेट्स अंदर है, हाँ जी मुंह के अंदर है, सही। तो जो बिल्कुल फ्रंटल, हाँ ये कह सकते हैं इनर वॉल्स एंड आउटर वॉल्स। आउटर वॉल्स बाहर की तरफ है, जो आप स्माइल करते हैं तो आपके टीथ जो नजर आ रहे होते हैं वो, जो इनर प्लेट्स हैं वो अंदर की तरफ हैं, वहां पर जब सनाया सुफला की जो इनर प्लेट्स हैं उनके साथ जब आपकी टिप टच करती है। ठीक है, आपने दोनों डेफिनेशंस नोट डाउन कर ली। अब हम इनको देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ, यानी इनका मतलब एक ही है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन स्टाइल आप कह सकते हैं डिफरेंट है या परसेप्शन स्टाइल डिफरेंट है। स्कॉलर्स का परसेप्शन स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है कि वो परसीव इसको डिफरेंटली कर रहे हैं, या फिर यानी दोनों चीजें हैं एक ही। सेकंड है कि जब टिप आपकी ऊपर और नीचे वाले दांतों के पैरेलल आ जाती है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह, सिर्फ आप इतना इतनी सी बात अभी जहन में रखें कि टिप आपकी ऊपर और नीचे वाले दांतों के पैरेलल आ जाती है। अब आप देखें कि इसकी मेथडोलॉजी क्या है, यानी लेटर को प्रोनाउंस करते हुए आपकी पोजीशन कैसे बनती है। होता यह है कि जैसे नाम इंडिकेट करे ना, सफर, सफर में असल में होता यह है कि सफर जो है ना वो हम इसको विसल से इसलिए रिजेम्बल करते हैं, सफीर यानी विस्लिंग साउंड को क्यों सफीर कहा जाता है, ऐसा वर्ड जो सफर से निकला है, इसलिए क्योंकि जब आप विसल करते हैं तो अमूमन जो वो होंठों को गोल करके विसल की जाती है ना, वो इसलिए की जाती है कि एक तो लिप्स का सर्कल सफर बनाया जाता है, दूसरा दोनों होंठों के बीच में एक बहुत नैरो पैसेज बनता है, इस वजह से उसको सफीर कहते हैं। सही। अब वो सफीर या नाम इन लेटर्स को क्यों दिया गया? क्योंकि असल में इन लेटर्स में क्या मेथडोलॉजी होती है कि ऊपर वाले जो दांत है ना दो, सनाया उलिया, और नीचे वाले जो दो दांत हैं सनाया सुफला, ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इतने करीब आ जाते हैं कि इनके बीच में एक नैरो ओपनिंग रह जाती है, एक छोटा सा होल बन रह जाता है, बस एक नैरो पैसेज होता है, एक नैरो ओपनिंग होती है। इसी नैरो पैसेज और ओपनिंग की वजह से इसको सफीर कहते हैं। जब वो साउंड आपकी उस नैरो पैसेज से गुजरती है ना, तो एक तो ये कि वो नैरो पैसेज सफीर की तरह, जैसे सिफर में आप नैरो पैसेज बना रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे भी वो नैरो पैसेज बन रहा है। दूसरा, उस नैरो पैसेज से गुजरने की वजह से ही विस्लिंग साउंड क्रिएट होती है। जितना आपका अच्छा वो नैरो पैसेज होता है, उतनी अच्छी आपकी विसल साउंड होती है। अच्छा, ये तो दांतों की पोजिशन होगी। जो टिप है ना आपकी, वो इन दांतों के इस नैरो पैसेज के बिल्कुल पीछे होती है। ठीक है, यानी टिप ऑफ टंग पैरेलल, पैरेलल आप देखें हम क्या कहते हैं, पैरेलल चल रही है ना लाइंस, आप तीन लाइंस ऊपर नीचे ड्रॉ कर दें तो वो पैरेलल चल रही है, बिल्कुल यही चीज आ रही है। यानी आपकी ऊपर आपके दांत हैं, नीचे आपके दांत हैं, सेंटर में आपकी टिप है, तो ये पैरेलल आ गई उनके, राइट? तो ये जो चीज है, ये फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगी कि जब आपकी टिप ऑफ टंग ऊपर और नीचे वाले इंसाइजर्स के पैरेलल आती है। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जब आपकी टिप नीचे वाले बॉटम इंसाइजर्स की इनर प्लेट्स के को टच करती है। अब होता क्या है कि जब आपकी टिप उस बिल्कुल नैरो पैसेज के करीब है ना, तो आप अगर अपनी टिप अपनी टंग को देखें ना, यानी उसमें थिकनेस में देखें, तो इट्स नॉट थिन एज अ प्लेट, यानी एक बहुत पतली सी चीज की तरह थिन नहीं है, आपको इसमें थिकनेस फील हो रही है। ठीक है, आपकी टंग जो है वो थोड़ी थिक है। फिर वो होता क्या है कि जो टंग की टिप का ऊपर वाला हिस्सा है वो उस नैरो पैसेज के बिहाइंड होता है, और जो टंग की टिप का नीचे वाला हिस्सा है वो बॉटम इंसाइजर्स की इनर प्लेट्स के साथ टच कर रहा होता है। ठीक है, अब एक मोटी सी चीज आपने ली हुई है ना, तो मोटी चीज का ऊपर वाला सिरा है, नीचे वाला सिरा है, तो जो ऊपर वाला सिरा है वो कहाँ आ रहा है, आपके दांतों के बिहाइंड, बिल्कुल वो जो नैरो पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, बहुत बारीक सा, तो आपकी टिप वहां जा रही है, और जो टंग का विड्थ वाइज मोटाई के हिसाब से जो नीचे वाला हिस्सा है ना, अब है तो वो भी टिप ही है लेकिन वो थोड़ी थिक नीचे बॉटम की तरफ जा रही है, वो वाला हिस्सा आपका कहाँ टच करता है, नीचे वाले दांतों की इनर प्लेट्स के साथ। आप इसको बोल के फील कर सकते हैं, एट अ टाइम बोथ ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग, कि वो टच भी हो रहे हैं बॉटम इंसाइजर्स के साथ और वो उस होल के पीछे भी है, क्योंकि होल बहुत डिस्टेंस पर नहीं है ना, तो वो आपकी टंग की थिकनेस इतनी काफी है कि वो उस जगह को कवर कर सके, होल के पीछे भी एट अ टाइम हो और बॉटम इंसाइजर्स की इनर प्लेट्स के साथ भी टच कर रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या क्या आपको बात समझ में नहीं आई, आप लिख सकते हैं जी। इसमें मैं आपको ये बता रही हूं कि जो दोनों डेफिनेशंस है ना वो साथ साथ चलती हैं, यानी आपकी जो वो नैरो पैसेज बनाया हुआ है ना आपने दो दांतों के बीच में, आपकी टंग उसके बिहाइंड होती है ना, तो चूंकि वो थिक है तो टंग बिहाइंड होने के साथ साथ नीचे वाले दांतों की अंदर वाली प्लेट्स को भी टच कर रही होती है, नहीं बिहाइंड भी होती है और साथ साथ वो नीचे वाले दांतों की अंदर वाली प्लेट्स के साथ भी टच कर रही होती है, क्योंकि उसका रुझान थोड़ा बॉटम की तरफ है, यानी नीचे की तरफ है, बहुत ऊपर नहीं है, ऊपर वाले दांतों के पास नहीं जा रही होती, तो वो नैरो पैसेज के बिहाइंड भी होती है और फिर नीचे वाले दांतों दांतों की इनर प्लेट्स के साथ भी टच करती है। तो जब ये टच होता है फिर क्या साउंड्स आती हैं, ये तीन लेटर्स की, अस और अज और असो। बहुत सारे स्कॉलर्स की ये ओपिनियन है कि अगर आप दांतों को जोड़कर इन तीन लेटर्स की अदायगी करना चाहते हैं तो इट्स टू मच हार्ड। ठीक है, तो ये आसान तरीका ये होता है कि आप नैरो पैसेज रखें, नैरो गैप रखें। अगर आप नैरो गैप के साथ बोल रहे हैं तो साउंड जो है वो आपकी अच्छी आएगी। ठीक है, अब हम इन तीन लेटर्स को इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहले सीन, सीन बहुत आसान लेटर है, चूंकि हम इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, उर्दू में यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं एस साउंड, तो ये वो बिल्कुल वही साउंड है, असा असी असु। सिर्फ इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि जब आप हरका के साथ इसको बोल रहे हैं तो आपकी साउंड सीन की क्लियर हो। लाइक जैसे हम सलाम करते हैं तो अस्सा अस्सा, यानी सा की साउंड आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, या सालीमून तो इसको साली साली जल्दी नहीं, सा साउंड दें और फिर आप उसको हरका के साथ बोलें, सालीमून। ठीक है, फिर जो जा की साउंड है वो लेटर जी की तरह है, इसमें सीन की तरह की आवाज नहीं होती। डिफरेंस क्या है, जा में एयर बाहर नहीं आती, सीन में एयर बाहर आती है। तो जब हम बोलते हैं अज़ा जुलजीरत जुलजीरत, ये जो साउंड है ये बेसिकली, यानी जब आप मखरज तो वही है सेम है, लेकिन जब आप एयर को कंट्रोल करते हैं अज, तो ये वाली साउंड आ रही होती है। ठीक है, और फिर थर्ड लेटर हमारा है वो है सौद। सौद और सीन की साउंड एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये होता है कि सौद हैवी है और सीन लाइट लेटर है। ठीक है, असो असोबिरीन। इस ग्रुप में से मैंने सबसे ज्यादा जो एरर देखा है वो सौद ही के अंदर देखा है, कि स्टूडेंट सौद की साउंड के अंदर प्रॉब्लम उनको आ रहा होता है, और उसकी वजह यह है कि जब वो उसको हैवी करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सौद को कैसे हैवी करते हैं, साइड्स को इन्वॉल्व करके, मखरज थोड़ा स्किप कर रहे होते हैं। लाइक ऐसी साउंड आती है सौ, मे बी आपने ये साउंड सुनी हो, इवन सीन में भी समटाइम्स सौ सौ, ये साउंड सौ नहीं सौ, यानी टिप को आपने उसी तरह से रखना है जैसे फ्रंटल पार्ट ऑफ टंग जो है वो सीन एंड सौद दोनों लेटर्स के लिए आपकी बिल्कुल सेम होगी। फ्रंटल पोजिशन में, फ्रंटल पार्ट ऑफ टंग में कोई फर्क नहीं आ रहा, डिफरेंस कहां पर आता है, बैक पार्ट ऑफ टंग में। बैक जो पार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ उठता है, फ्रंट पार्ट आपका सेम रहता है जी। इसमें भी रनिंग साउंड है जी, वही मैं आपको बता रही हूं कि हैवीनेस में ना आप जब सौ हैवी करेंगे तो टिप की जो पोजीशन है आपने वो खराब नहीं करनी, क्योंकि टिप इज द मखरज, अगर आप टिप को खराब करते हैं तो आपकी साउंड खराब हो जाएगी। तो डीप पार्ट आपका ऊपर जाएगा, जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग है वो आपका ऊपर जाता है, और टिप आपकी मखरज के ऊपर रहती है, टिप आपकी बिल्कुल वही पोजीशन लेगी जो सीन की है। ठीक है, इंशाल्लाह हैवीनेस के अंदर और भी बहुत सारी पोजीशन, टंग की पोजीशंस बन रही होती हैं, जिसको हम इंडिविजुअली आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपके लिसान के लेटर्स थे, सही। इसके बाद अब हमारे पास जो लेटर्स आ रहे हैं वो है लिप्स के। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम इसको खत्म कर देंगे, मखारिज को। लिप्स के मखारिज हैं, लिप्स के अंदर दो मखारिज पाए जाते हैं, और इन दोनों मखारिज से जो साउंड जारी हैं उनको हम हरूफ शफविया कहते हैं। ठीक है, शफवी लेटर्स, नाम इनका एक ही है, शफविया, लेकिन मखरज जो है वो थोड़ा फर्क आ रहा होता है। दो मखारज हैं। फर्स्ट मखरज है वो लेटर्स जिनमें दोनों लिप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कौन कौन से लेटर्स हैं? वाउ, बा एंड मीम। वाव का मखरज है, ये एक्चुअली आप जब दोनों लिप्स का सर्कल बनाते हैं ना तो ये लेटर अदा होता है। अव्वा, अव्वी, अव्वो। इसके अंदर भी बहुत सारे कॉमन एरर्स पाए जाते हैं, जैसे बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसको डब्ल्यू के अलावा वी की साउंड देते हैं, यानी लिप्स का सर्कल बनाने की बजाय वी की आवाज देते हैं, यानी अव्वा या वल्लदीना, वा वा आवाज आ रही होती है, वा नहीं, वा वा सर्कल से। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब वो सर्कल से इसको अदा करते हैं तो उनका वाव हैवी होता है, लाइक वॉल वॉल, तो वो नहीं, वो मा वो नहीं, वा वा सर्कल से आएगा, लेकिन आपने लाइट रखना है, क्योंकि जैसे हमने देखा ना कि बाजू का सर्कल बनाते हुए, लिप्स का सर्कल करते हुए, इवन आप जब दम्मा बोलते हैं तो आप दम्मा की अदायगी के वक्त जब आप लिप्स का सर्कल बनाते हैं तो आपका डी पार्ट जो टंग का है वो खुद ही ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर उठने की वजह से ना ये होता है कि मुंह में एक हैवीनेस बन जाती है, अगर आप उस हैवीनेस को कॉन्शियसली पुश आउट नहीं करते तो वो आपके मुंह में रुक जाती है। ठीक है, वा वा मा, तो आपने वाव को लाइट करके बोलना है, मुंह में हैवीनेस क्रिएट नहीं होने देनी। सही। फिर इसके बाद जो लेटर आता है वो है बा। लेटर बा दोनों लिप्स के स्ट्रॉन्ग हिट से आता है। नॉर्मल आपके लिप्स ऊपर नीचे जैसे है ना, ऐसे ही आप इनको ज्वाइन करेंगे, नॉर्मल जैसे ज्वाइनिंग होती है, लेकिन हिट आपका स्ट्रांग होगा। ये आई होप सो कि अब आप ये बात अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस तरह से हिट आपका वीक होता है और कैसे आपका हिट स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कॉफ में हिट स्ट्रांग है लाइक अ हिट ऑफ अ बॉल, जा में स्ट्रांग है, और लेटर्स में जैसे हमजा में स्ट्रांग है, कुछ और लेटर्स में स्ट्रांग है, प्लस आपका बा में स्ट्रांग है। ठीक है, तो बा की जो साउंड है वो स्ट्रांग हिट से आती है। अब जो मखरज ऑफ मीम है वो भी सेम है, दोनों लिप्स की ज्वाइनिंग है, लेकिन मखरज ऑफ मीम मीम नॉर्मल मीडियम हिट से आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हिट नहीं है बल्कि मीडियम हिट है इसका। एम मा, तो आपने इन दो लेटर्स को कंपेयर करना है कैसे, इकट्ठा बोल के मा बा मा बा। अगर आपका हिट मा और बा के लिए सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ द हिट, इट मीन्स योर बा इज वीक। ठीक है, यानी एक जैसे हिट से नहीं आपने बोलना, माँ का हिट नॉर्मल है सॉफ्ट है और बा का जो हिट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब बा बी बू बिस्मी, इसको आप यूं नहीं बोलते, बिस्मी बी बहुत लाइट करके या भी यूं करके, यानी उसमें एयर भी आ रही हो, बिस्मी नहीं, बी बिस्मी, अब बा बी बू, ये साउंड आपको आ रही होगी, एक ब्रेकी सी साउंड है, ये हमेशा प्रेजेंट होती है, जो लेटर्स स्ट्रॉन्ग हिट वाले होते हैं ना ये साउंड उनमें प्रेजेंट होती है, कि जब आपके लिप्स ज्वाइन होते हैं तो हल्का प्रेशर देके आप उन्हें पार्ट करते हैं तो ये साउंड उसमें आती है। अब बा बी एंड बू। ठीक है, और मीम के लिए नॉर्मल हिट है, अम मा मी एंड मू। ओके, ये तो फर्स्ट मखरज हो गया, हरूफ शफ़विया का फर्स्ट मखरज जिनमें दोनों लिप्स की इन्वॉल्वमेंट थी। सेकेंड जो मखरज है वो है जब ऊपर वाले सामने के जो दो दांत हैं वो नीचे वाले होंठ के वेट एरिया को टच करते हैं, इनर इनर पार्ट ऑफ लिप को टच करते हैं, तो लेटर फा अदा होता है। ये एक लेटर है जो डिफरेंट मखरज से आ रहा है। इस मखरज क्यों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है? क्योंकि इसमें एक लिप की इन्वॉल्वमेंट है। जी मीम में गुन्ना है, गुन्ना को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लास्ट मखरज में। जब सामने के ऊपर के दो दांत सनाया उलिया नीचे वाले होंठ के इनर पार्ट को, जो अंदर वाला लिप का एरिया है ना, उसको टच करता है, वेट एरिया जो है, गीला हिस्सा जो है वो, आउटर पार्ट को नहीं बल्कि वेट एरिया को। हाँ जी, जब उसको हिट करता है तो लेटर एफ फा अदा होता है। अच्छा, फा में भी ना इसको जब हम साकिन बोलते हैं तो दफ यू, ये तो आसान होता है, लेकिन जब हम इसे हरका के साथ बोलते हैं तो मैंने फा को भी देखा सा की तरह ये बहुत स्किप होता है। यानी जैसे सा में मैंने आपको बताया ना कि सा लेटर की आवाज बिल्कुल उमेठी हो जाती है, बिल्कुल फा के साथ भी यही होता है। यानी पलम्मा, तो द फा इज नॉट ऑडिबल, सिर्फ आप परसीव करें कि आप फा बोल रहे हैं, वरना फा की कोई साउंड नहीं आ रही। इंस्टेड आपको कैसे बोलना चाहिए? फलम फलम्मा, के फा की साउंड आए, फलम फलम्मा, ठीक है। तो ये भी जब हरका के साथ होता है तो इसमें इस यानी कॉन्शियसनेस के साथ, या इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि फा की साउंड भी रन करे और उसमें एयर भी आ रही हो। बाकी लेटर इज नॉट हार्ड क्योंकि हम इसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो इस तरह से बहुत मुश्किल हर्फ नहीं है। तो ये दो मखारिज हो गए लिप्स के, ठीक है। तो अब तक हम कितने मखारिज पढ़ चुके हैं? 16 मखारिज पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट मखरज पढ़ेंगे विच इज अल खुयशूम। आपको याद है हमने मखारिज को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था? किसी को याद है वो दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी थी? जी बिल्कुल गुड, मखरज मुकद्दर एंड मखरज मुहक्कक। मुहक्कक जो है वो डिस्टिंक्ट मखारिज थे, और मैंने आपको बताया था कि जितने अल्फाबेट्स है ना वो तमाम के तमाम मुहक्कक मखारिज से आते हैं। कौन कौन से? अलहलक, अलसान, इन अशफतान। तो आप सारे मुहक्कक मखारिज कर चुके हैं, इट मीन्स कि आप सारे अल्फाबेट्स कर चुके हैं। फिर मुकद्दर मखारिज में हमने कहा था अलजौफ, विच इज अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया, जो मद लेटर्स हैं तीन, वो वहां से आ रहे होते हैं। और खैशूम, अल खैशूम के बारे में स्कॉलर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या ये मुहक्कक है या ये मुकद्दर है। तो कुछ स्कॉलर्स इसको मुहक्कक में लेते हैं, कुछ इसको मुकद्दर में लेते हैं, और दोनों की जो लॉजिक्स हैं वो इट्स ओके कि वो ठीक है, ठीक है। यानी जो मुहक्कक में लेते हैं ना वो कहते हैं क्योंकि साउंड नेजल कैविटी एक स्पेसिफिक एरिया से आ रही है, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह से आ रही है, क्योंकि हमने कहा था ना मुहक्कक वो होते हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट से आ रहे होते हैं, आपको फील होता है कि साउंड कहां से आ रही है। तो जो इसको मुहक्कक लेते हैं वो कहते हैं चूंकि साउंड एक स्पेसिफिक एरिया से आ रही है इस वजह से हम इसको मुहक्कक के अंदर शामिल करेंगे। जो मुकद्दर में लेते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि इट्स एन एरिया, नेजल कैविटी एक पूरा एरिया है, उसमें आवाज किस पॉइंट से आ रही है वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। वो एक पॉइंट यूज करने के बजाय आवाज पूरा एरिया यूज करिए, इसलिए फिर वो मुकद्दर में इसको लेते हैं। तो बहरहाल बात एक ही है साउंड के अंदर या साउंड की प्रोनाउंसिएशन के अंदर कि कहां से साउंड आ रही है, देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ एक जो है एक मुहक्कक या मुकद्दर होने में उसका इख्तलाफ राय पाया जाता है। इसमें जो खैशूम है वो क्या है? ये नेजल कैविटी है जो आउटर, इसकी जो लिमिट है वो जो आपके आउटर नॉस्ट्रल्स हैं वहां से शुरू होके ये पूरे नाक की कैविटी है जो अंदर रन होती है, और इसकी जो इनर ओपनिंग है ना वो हलक के पास है। आप इसको फील कर सकते हैं सांस लेकर कि जब आप ब्रेथ इन करते हैं तो आउटर नॉस्ट्रल से, मुंह बंद करके सांस लें तो आउटर नॉस्ट्रल से क्या होता है साउंड आपकी नेजल कैविटी में जाती है, और कैविटी से फिर जो सांस है वो कहां हलक की तरफ, वहां पर एक ओपनिंग होती है जिससे वो हलक में जाता है, जो साउंड है वो आपकी हलक में जा रही होती है। ठीक है, तो ये अल खैशूम है। अब अल खैशूम से कोई लेटर नहीं आता, तो हम अल्फाबेट सारे कर चुके हैं, हमने कहा वो मुहक्कक मखारिज से आते हैं, तो अल खैशूम से कोई भी लेटर नहीं आता। अल खैशूम से गुन्ना की आवाज आती है। अब गुन्ना क्या है? गुन्ना नेजल साउंड है जी, इसका जो एरिया है नेजल कैविटी का वो आउटर नॉस्ट्रल से शुरू होके पूरी नाक की जो कैविटी है वो सारी, और इसकी ओपनिंग होती है इनर माउथ के अंदर, यानी बिल्कुल जो आपका डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग है ना वहां पे नॉस्ट्रल्स की एक ओपनिंग होती है, तो ये सारा एरिया आपकी नेजल कैविटी है। और इससे कौन सी आवाज आती है? गुन्ना की आवाज आती है। गुन्ना क्या है? गुन्ना नेजल साउंड है, अ कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ लेटर नून एंड मीम। हर्फ नून और हर्फ मीम का लाजमी हिस्सा। अब हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट ये रखा जाता है कि गुन्ना तब किया जाता है जब आप इख्फा कर रहे हैं, या गुन्ना तब किया जाता है जब आप इन अल्लदीना या सुम ज्यादा रुक रहे हैं तब गुन्ना किया जाता है। याद रखें कि जब भी आप नून और मीम को अदा करेंगे आवाज नाक से आएगी, नेजल कैविटी इन्वॉल्व होगी। जब नेजल कैविटी इन्वॉल्व है इसका मतलब है कि गुन्ना हो रहा है। इन दो लेटर्स को आप कभी भी गुन्ना के बगैर नहीं बोल सकते, चाहे आप वा मां क्यों ना बोल रहे हो। अगर आप मां बोल रहे हैं ना, मां को भी नाक में आवाज रन के बगैर नहीं बोला जा सकता। नहनू, ये दोनों नून्स के अंदर गुन्ना है। हाँ, टाइमिंग्स ऑफ गुन्ना इज अ डिफरेंट थिंग, टाइम कम ज्यादा हो रहा है वो एक अलग बात है, मगर गुन्ना इज देयर। और इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये साउंड आपकी नाक के अंदर रन करती है, अगर आप अपने नॉस्ट्रल्स को थंब एंड फिंगर से बंद कर दें, यानी अगर आप थंब एंड फिंगर से बंद कर देते ना, एक पोर्शन आपने बंद कर दिया बाहर वाला, अब आप नून के मखरज को हिट करें तो क्या आवाज आएगी? अड अड, दैट्स नॉट नून। इज इट नून? नो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नॉस्ट्रल्स बंद कर दिए, तो वो साउंड उसके अंदर जा रही है लेकिन वो उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो रन करे वहां ना, क्योंकि नाक बाहर से बंद है तो आवाज बाहर नहीं जाएगी, इसलिए वो वहीं पर ब्लॉक हो रही है, वो साउंड में गुनना नहीं आ रहा और वो नून नहीं है। अड अड ये साउंड आती है जो ऑलमोस्ट क्लोजर टू डी साउंड है, ठीक है, या डा 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 ये साउंड आती है नाक को बंद करके। अगर इसी तरह से आप मीम को बोलते हैं और आप अपने नॉस्ट्रिल्स को पकड़ लें, अपने नाक को अपने थम एंड फिंगर से बंद कर दें, यानी पकड़ लें उसको, जोर से दबा दें और आप मीम को बोलने की कोशिश करें, तो आपकी साउंड कैसी आएगी? बा बा बा, मुझे तो ये बा लग रहा है, ठीक है, इट्स नॉट मीम एट लीस्ट। बा, और अब यानी उस तरह से। तो जब तक इन दो लेटर्स में नेजल कैविटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये ना तो नून बन सकते हैं ना मीम बन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम अगर ये कहें कि नून और मीम को अदा करते हुए आपको दो मखारिज की जरूरत होती है, तो इट्स नॉट रॉन्ग। नून और मीम दो मखारिज से अदा किए जाते हैं, एट अ टाइम दो मखारिज को यूज करें, एक उनकी अपनी साउंड है जिसके अंदर एक कंपलसरी क्वालिटी इन्वॉल्व है, जब तक आप वो क्वालिटी ऐड नहीं करते आपका लेटर मुकम्मल नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, फिजिकल हिट एंड मखरज, और फिर साउंड आपकी क्या करती है, फॉरन नेजल कैविटी के अंदर ट्रेवल करती है, एन एन, या जैसे अवॉशमैन, तो आप जैसे ही नून को हिट करते हैं साइमल्टेनियसली हिट के फौरन बाद, यानी आपकी जो साउंड है वो नेजल कैविटी में जाती है। याद रखें कि हिट से पहले साउंड को नेजल कैविटी में नहीं जाना चाहिए। अगर अभी आपने यानी जैसे लिप्स को भी बंद नहीं किया मीम के लिए और आप नेजल कैविटी खोल देते हैं और साउंड देने लग जाते हैं, तो वो साउंड स्ट्रांग नहीं आती, यानी फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया, मैंने पहले से नेजल कैविटी खोली हुई है तो वो साउंड इतनी खूबसूरत नहीं है, नहीं, आ नेजल कैविटी बंद, और नेजल कैविटी कब खोलनी है, जब आपके लिप्स ज्वाइन होंगे तो फौरन आपने नेजल कैविटी खोलनी है, ये साउंड, अब इसके अंदर ब्यूटी है, आप इसका डिफरेंस फील कर सकते हैं। जी, तो ये जो साउंड है यानी गुन्ना की जो क्वालिटी है वो नून और मीम की कंपलसरी क्वालिटी है। जी, मा में भी आपने ऐसे ही कहना है, यानी पीछे वाले लेटर में, मा में ये होता है कि आपके लिप्स बंद होते हैं तो आप नेजल कैविटी खोल के और फिर आप लेटर को पार्ट करते हैं, लेकिन अलिफ में नहीं जाना चाहिए, यानी मा यू अलिफ में नाक में आवाज ना हो, मा जी। लिप्स क्लोज करने का पॉइंट ये था कि जैसे ही आपके लिप्स बंद होते हैं ना साकिन, जब आप मीम को बोलते हैं, तो जैसे ही आप हिट करेंगे मखरज को, फिजिकल हिट देंगे, उस वक्त आपने नेजल कैविटी खोलनी है, उससे पहले नहीं। अगर आप पहले खोल देते ना तो साउंड नेजल कैविटी में रन करना पहले शुरू कर देती है और आपकी साउंड में ब्यूटी नहीं आती। सही जी। इस खैशूम की प्रैक्टिस के वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी नेजल साउंड मीम और नून तक महदूद रहे, पीछे और आगे वाले लेटर के अंदर ना जारी हो। ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि नेजल साउंड जो है जब वो पीछे या आगे वाले लेटर के अंदर आती है ना, तो वो उस ब्यूटी को खत्म कर देती है, जैसे मैं अभी मेंशन कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड बोलते हैं अर्रहमान, अब ये क्या हुआ, ये मीम से नेजल साउंड शुरू हुई है और नून पर खत्म हुई है, मैंने नाक को बीच में बंद नहीं किया, मीम को भी दिया, अलिफ को भी दिया और फिर नून को भी आगे नेजल साउंड दी, इसमें आपकी नेजल साउंड मीम में है, नून में है, नॉट इन अलिफ। अर-रहमान, नहीं, अर-रहमान, मान। आप देखिए कि आपका अलिफ जो है वो नेजल साउंड के बगैर आ रहा है। सेम इज विद द वर्ड अर-रहीम। तो यहां पे अगर आप मीम से पहले नेजल कैविटी ओपन कर देंगे तो ये साउंड क्या आएगी, अर-रहीम, यानी साउंड आपकी आएगी ही। सारी रन करिए, हा से मैंने नाक खोला है, हा से नेजल कैविटी ओपन हो रही है, हालांकि हा में कोई गुना नहीं है, या में भी जारी है, मीम में भी जारी है। तो आपने इसकी साउंड को कब, नेजल कैविटी को कब ओपन करना है, अर-रहीम, ही। देखिए बिल्कुल क्लियर साउंड है या की एंड हा की, ही। जैसे ही लिप्स आपने बंद किए, हीम हीम, ठीक है। अच्छा, नेजल कैविटी को क्लोज कैसे करते हैं? एक तो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ही कहते हुए अगर आप अपने नाक को भी दबाए ना, यानी आप अपने थंब से एंड फिंगर से अगर आप अपने नाक को प्रेस कर देते हैं तो साउंड नेजल कैविटी में नहीं जाएगी। आप इसको करके देख सकते हैं, हीम। और जैसे ही आप मीम के लिए लिप्स बंद करें, आप उसे खोल दें, तो आपकी साउंड बहुत क्लियर डिस्टिंक्ट होती है। लेकिन ऑफ कोर्स अब आप रीडिंग के दौरान हर वक्त तो नाक पकड़कर या नाक को छोड़कर नहीं ये एक्सरसाइज कर सकते। मैंने आपको बताया था कि इसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक आउटर नॉस्ट्रल्स हैं। एक्चुअली मैं ये पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा उस सोचों में पड़े। आप में से बहुत सारे लोग शायद बिगिनर्स हों और वो उस तरह से बहुत सारे एरियाज को ना परसेप्ट कर सके, लेकिन देखें अगर आपको समझ में आ जाती है बात। इसमें ये होता है कि इसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक आउटर नॉस्ट्रल्स है और एक अंदर वाली ओपनिंग है जो इनर इनर ओपनिंग है। इस इनर ओपनिंग को भी हम बंद कर सकते हैं, और एक्चुअली हम रीडिंग के दौरान उस इनर ओपनिंग को बंद करते खोलते हैं। अब ये इनर ओपनिंग बंद कैसे होती है, कैसे खुलती है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसको आप फील कर सकते हैं, अगर आप ना जो है आप नाक से सांस लें, यानी इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें, ठीक है, सिर्फ नाक से। फिर आप दो तीन ब्रेथ्स लेने के बाद आप यही काम मुंह से करें। जब आप मुंह से सांस अंदर करें हैं और सांस बाहर करें, आप सिर्फ मुंह इन्वॉल्व करें, नॉट योर नेजल कैविटी, नाक से आपका सांस नहीं आ रहा, आपने नाक बंद किया, खुद से बंद किया, हाथ से पकड़ के नहीं, आपने नाक बंद किया, आपका सारा फोकस क्या है, इनहेल फ्रॉम दी माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम दी माउथ, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो आपने नेजल कैविटी को अंदर से बंद किया, ये वो ओपनिंग है जिसको हम बंद करते और खोलते हैं, नेजल साउंड को ऐड करने के लिए और नेजल साउंड को रिमूव करने के लिए। मैं फिर से रिपीट करती हूं, अगर आप सिर्फ आप पहले ये चीज अगर आप दोनों चीजों को इकट्ठा करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। पहले आप इनहेल करें, एक्सहेल करें 2 to 3 टाइम्स ओनली फ्रॉम योर नोज, और ये हम जनरली करते हैं, हम ज्यादातर सांस नाक से लेते हैं। अब आप क्या करें कि सिर्फ मुंह के ऊपर फोकस करें। अब जैसे वो गहरे सांस लेते हैं ना, कहते हैं ना गहरा सांस लें, मुंह से गहरा सांस लें, तो आप वो काम करें, मुंह से सांस लें, इनहेल करें और मुंह से एक्सहेल करें। अब जब आप मुंह से इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सहेल करते हैं तो आप ये बात फील करेंगे कि नाक में क्यों नहीं हवा जा रही, क्योंकि आपने वो पैसेज वहां पर ब्लॉक किया है। और आपको फील होगा, आपको ये बात फील होगी, आप 3-4 दफा ऐसे करें, मुंह से इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर आप नाक को खोलें और एक इनहेल और एक्सहेल नाक से करें, तो अब आपको डिफरेंस फील होगा कि आपने वहां पर हलक के पास कोई एक ओपनिंग है, नेजल ओपनिंग, उसको ब्लॉक किया हुआ था, और उसको ब्लॉक करने से जो आपकी साउंड है सॉरी, तो वो जो ओपनिंग है जिसको आपने ब्लॉक किया था, उसको ब्लॉक करने की वजह से आपकी साउंड नेजल कैविटी में नहीं गई। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इससे जो है वो आप उसको बंद करके, नेजल कैविटी को बंद करके आप जो है वो गुन्ना की साउंड को एक्सेसिव होने से रोक सकते हैं, यानी आपकी गुन्ना की आवाज जो है वो हर लेटर के अंदर फिर नहीं आ रही होती, फिर वो महदूद हो जाती है नून और मीम तक। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो मखारिज का चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब आपका होमवर्क इतना सा है कि आपने ना इस चैप्टर को रिवाइज करना है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जहां से हमने इस्तआजा और बसमल्ला की रूलिंग्स पढ़े थे, फिर लहन पढ़ा और सख्त बीच में सूरस को ज्वाइन करने के तरीके पढ़े, तौबा अलनफाल को ज्वाइन करने का स्पेसिफिक तरीका पढ़ा, डिफरेंट जो तिलावत की मरातब थे वो पढ़े, एंड देन मखारिज आपने इनको रिव्यू करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी लिसनिंग भी करूंगी, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी, ताकि जस्ट टू मेक श्योर के बिफोर गोइंग अहेड आपका ये वाला चैप्टर आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके के साथ क्लियर हो जाए। एक और चीज आप माइंड में रखें कि जब हम कॉमन एरर्स के साथ और इतना इन डिटेल मखारिज पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आई होप सो के इट्स ओके कि आप उनसे एक दफा गुजरे हैं, वो आपके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएंगी और जरूरत पड़ने पे वो आपको बहुत हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। इसमें जिस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मखरज है, ओनली मखरज। अगर आपको उसके समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बारहा पूछें, इंशाल्लाह मैं उसको रिपीट कर दूंगी, लेकिन जो बाकी जैसे टिप्स हैं और इन सारी चीजें अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो आप बिल्कुल दिल की तंगी इसमें महसूस ना करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चलेंगे, सफात की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना इनर माउथ की पोजिशंस की, टंग कहाँ जा रही है, कहाँ से क्या चीज हिट हो रही है, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह जो है उस वक्त ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ हिट करना है और मेरी टंग कहाँ जा रही है, क्या वाकई वो उस पोजिशन पर जा रही है या नहीं जा रही। हाँ, अगर नहीं जा रही तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे कोई टिप इल्म में हुई तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। जी, लिसनिंग का वही लास्ट लेसन है। आई डोंट नो हम सूरत नबा की कौन सी आयात पर थे, किसी सिस्टर को याद है तो प्लीज लिख दीजिए। सूरत नबा की हम प्रैक्टिस करे थे जी, 23 से लेकर 30 तक। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बारकुम अल्लाहु फीकुम। जी बिल्कुल, लास्ट लेसन होगा इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।